मेरे सामने एक ऐसी जस्ट लाइक सैंपल है, असद यानी लियो एक स्टार है। अब ये जरा मैं आपको ना थोड़ा सा, अब कहते हैं ना कि किसी चीज की रियलिटी देखनी है तो उसको खोल के सुना दो, तो कुछ एड्स जो चलते हैं हमारे अखबारों में इधर उधर वो पढ़ के सुनाती हूँ, ताकि आपको मैं मजीद अच्छी तरह बता सकूँ कि इसमें बेतुकी बात क्या है ना। अब ये लियो एक स्टार होता है, असद बोलते हैं उर्दू में, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि असद हजरात इस हफ्ते अपने फैमिली उमूर को बेहतर बनाने में गुजारते नजर आएंगे। वो अफराद जिनके घरेलू ताल्लुकात खराब हैं, इनमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। बड़े भाई बहनों के साथ ताल्लुकात और उम्मीदें, वाबस्ता उम्मीदें पूरी हो सकेंगी। तालिब इल्मों का ये हफ्ता बेहतर गुजरेगा। हफ्ते के शुरू के दिन दूसरों से मदद लेने के एतबार से बेहतर रहेंगे। जिन अफराद को दिल की बीमारी की शिकायत है, इसमें बेहतरी आएगी। असद खवातीन वीकेंड पर शॉपिंग करना पसंद करेंगी। ला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ऐसा लग रहा है कि ये मैंने जो दो तीन मे बी 1 मिनट और मोर देन यूज किया, ये भी बेकार। इसमें नई बात क्या की है आपने नोट किया? इन्होंने सबको खुश करना चाहा, ये इस दिन ये होंगे, ये बेहतर होगा, वो बेहतर होगा, स्टूडेंट्स का भी बेहतर होगा, शॉपिंग, और वीकेंड पे तो वैसे ही बहुत शॉपिंग करती हैं खवातीन। आज का दिन कैसा गुजरेगा, ये एक और ऐड है। स्क्रीन होती तो मेरे साथ आप भी इंजॉय करते, लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ। एक पेज बना हुआ है और उस पर पूरे 12 स्टार्स हैं, हमल, सौर और जोजा, वट एवर आप जानते हैं जो है। ऊपर हमल में लिखे, अंदाजे गुफ्तगू में बेहतरी आएगी, लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, हर मसले को इसकी नौयत के एतबार से हल करने की कोशिश करें। सौर, इस दवाजी मामलात तनाव का शिकार रहेंगे, सैर व तफरी के लिए जाएंगे, खानदान और उम्र में बड़े लोगों की उम्मीदों पर पूरा न उतर सकेंगे। ये तो कोई भी नहीं उतरता, सिर्फ आज के हफ्ते की क्या बात है या आज के दिन की क्या बात है। अब आप देखिए कि इसमें क्या चीजें हैं, आप इन बातों को सुने, बेकार बातें, इसलिए और भी पढ़ लूंगी तो वो बेकार ही होंगी। पूरे 12 का इन्होंने, और कुछ ना कुछ ऐसे रखा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, माल नहीं देंगे, ये दिस एंड दैट। आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने क्या फरमाया, गैब का इल्म अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे कहीं आए, तो शादी का मौका था, तो मुझे कुछ बच्चियां शादी के गाने गा रही थी, यानी आप अरबों का कल्चर जानते हो, तो शादी का मौका होता है ना, तो छोटी बच्चियां, बड़ी नहीं, ये जिसको हम बिल्कुल 7-8 साल की अर्ली बच्चियां कहते हैं ना, इस एज की जो बच्चियां होती है ना, ये बैठ के तो मुजाहिदीन के किस्से गाती हैं, जिसको हमारे यहाँ कौमी नगमे कह लें या फौजी नगमे कह लें, वो गाती हैं। तो वो कोई ऐसा मौका था तो वो सब गा रही थी। इतने में नबी सल्लम वहां आ गए, आपको आता देख कर ना, तो उन्होंने क्या कहा, शेर जो पढ़ा उसका मतलब क्या था कि वफी न नबीयुन, हमारे बीच में वो नबी है जो जानता है कि माज़ गदिन, कल क्या होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने उनको फौरन रोका और आपने कहा कि जो पहले कह रही थी ना वही कहती रहो, कल क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता, अल्लाह के सिवा कोई गैब जानता। फिर आप देखिए कि ये जो पेमिस्ट्री है, इसकी एक किस्म क्या है, फाल निकलवाना। क्या आपके जहन में कोई इमेज बनता है कि सड़क के किनारे एक बाबा बैठा है, आदमी सर में सारे दिन मिट्टी पड़ती रहती है, धूल पड़ती है, मक्खियां बिन बनाती हैं, और सामने वो एक बोरी के ऊपर 4-6 लिफाफे रख के तोता रख के बैठा है, आप आइए फाल निकलवाइए, आप आइए पैसे दीजिए, फिर तोते को कहता है इनकी किस्म फाल निकालो, वो कोई एक लिफाफा पकड़ेगा, फिर वो पढ़ेगा और उसमें इसी तरह की बेतुकी बातें लिखी होंगी, आप इमेजिन कीजिए। एक अक्ल से बंदा अगर सोचे, सिर्फ अक्ल से सोचे, तो ये बात को समझ में आने वाली है। एक तोता यानी बेअकल बेसमझ तोता, उसको आप कह रहे हैं कि वो किस लेके आए, फिर उसके बाद वो जो लिफाफे वहां रखे जाते हैं वो किसने लिखे हैं, कोई बताएगा? इंसानों ने लिखे हैं ना, इंसानों के लिखे हुए लिफाफों को एक परिंदा उठा रहा है। पढ़ने वाले का नसीब अगर तोते की फाल से निकल जाता तो वो उसको तो कुछ मिलता, जैसे कहते हैं ना कि एक दफा फाल निकलवाने जो आए तो उसने, लोग पूछते हैं ना किस चीज की फाल निकलवानी है, कोई कहता है कि बताएं कि मुझे जॉब कब मिलेगी, कोई कहता है मैं पास कब होऊंगा इम्तिहान में, तो एक शख्स आया, उसने कहा मैंने फाल निकलवानी है, उसने कहा क्या फाल निकलवानी है एक तोते से, कहता है उससे ये पूछ के बताओ कि ये तोते वाले की किस्मत कब संवरेगी, जिसको मैं पिछले कई साल से यहाँ सड़क के किनारे बैठा देख रहा हूँ, ये दुरुस्त नहीं है। अपने हम लोग को जाया नहीं करना, कुरान में तला तुब तिलु आमाल को, बड़ी मेहनत की कमाई होती है अमाल जो होते हैं, नसीब हो तो फिर ही बंदा करता है, और करके जाया हो जाए तो फिर अफसोस और दुख उसका ज्यादा होता है। तो लिहाजा इस किस्म की किसी चीज में नहीं आना। फिर एक इसका एंगल हमारे कल्चर में मारूफ है, वो कि शादियों के वक्त स्टार्स को देखना, किसका सितारा मिलता है। और बाज़ लोग अपनी डाइवोर्स की वजह ये कहते हैं कि हमारी सही जगह शादी नहीं हो सकी, और फिर उसकी वजह में वो आके कहते हैं कि चूंकि ये दुरुस्त नहीं है दैट एंड दैट, तो बस फिर हमारा तो कोई कसूर नहीं है। आप देखिए कि नबी सल्लम की 9 से ज़्यादा शादियाँ हम देखते हैं। आपने जितना भी अभी तक दीन सीखा है, कहीं भी बचपन से लेके अब तक दरसों में या जुम्मे के खुतबों में या किताबों में, कभी आज तक आपने पढ़ा कि हज़रत आयशा का स्टार क्या था और मोहम्मद सल्लम का स्टार क्या था? सेंस बनती है सजता? आप सुने कि हज़रत आयशा से नबी सल्लम को बड़ी मोहब्बत थी, ये तो आप पढ़ेंगे कि खुद नबी सल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह मुझे आयशा के मामले में ना पकड़ना, कि मैं इंसानी नाते से अपनी बाकी बीवियों के और इसके बीच में अदल करता हूँ, लेकिन मेरा दिल इनसे झुकता है। फितरी मोहब्बत होती है, और आयशा थी भी ऐसी भोली सी और प्यार करने वाली खातून थी, तो अल्लाह के नबी को मोहब्बत थी। क्या आप ये कह सकते हैं कि हजरत आयशा से आपको इसलिए मोहब्बत थी कि आपका और हजरत आयशा का स्टार मैच करता था? सोच सकते हैं आप, कोई मैचिंग बनती है इसकी? या आप कह सकते हैं कि हजरत आसिया ने जो फिरौन को चैलेंज कर दिया कि मैं तुझे रब नहीं मानती और मैं अल्लाह को मानती हूँ, और फिरौन ने अपनी बीवी को सूली पे चढ़ा दिया, तो क्या इसके पीछे ये था कि फिरौन के और बीवी आसिया के सितारे उस दिन गर्दिश में थे? कभी सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का जिक्र कुरान में मौजूद है। सूरह कसस पढ़ के देखिए कि कैसे अल्लाह ताला ने उनका जोड़ मिलाया, और कहाँ का चलता मूसा कहाँ पहुंच गया और शादी हो गई। तो जब उनके बाप ने, लड़कियों का जो बाप थे वहां, उन्होंने ये पूछा था कि बताओ तेरा स्टार क्या है? आप कुरान और हदीस पूरे का पूरा जमा कर लें, ये इस्लामिक मिजाज ही नहीं है। ऐसी तमाम चीज़ों से इंसान अपने आप को पीछे करता है, ऐसी चीज़ों को नहीं लेकर आना। फिर इसी तरह आप देखिए कि सितारों पे जब बहुत ज़्यादा रिलाय आप करते हैं ना, तो आप अपने अमल से दूर हो जाते हैं। रिसर्च, कोशिश, इस्लाम ने क्या कहा कि आप अपने आप को दीन के नाम पर किसी के सामने पेश करो। हदीस में था कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आए कि जिसके दीन और इखलाक को तुम पसंद करो, तो वहां अपने बच्चों का रिश्ता कर दो, अगर नहीं करोगे तो फितना आएगा दुनिया में। अब ये कितना क्राइटेरियन दे दिया अल्लाह ताला ने कि ऐसा जो है वो मामला ऐसे आएगा। जब आप इस चीज को लेकर पीछे करके दूसरी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो आप देख लीजिए आज के दौर में क्या हो रहा है। आज के दौर में यही कुछ हो रहा है, कितने बेजोड़ रिश्ते हैं और कितने शादियां होती हैं और उसके बाद टूट जाती हैं। वजह क्या है कि सिर्फ टू मैनी रिसर्च, टू मच रिसर्च। बाज़ लोग कहते हैं कि सितारे देख के शादी की होती तो घर बस जाता। तो आप बताइए कि आपकी नानियों दादियों के वक्त में जो शादियां होती थी, स्टार्स देख के करते थे? आपको पता है कि आज मुस्लिम डाइवोर्सेस और नॉन मुस्लिम डाइवोर्सेस का रेशियो इन मुल्कों में इवन हो चुका है? वजह क्या है? आजकल तो ज्यादा ही रिसर्च कर करके शादियां की जाती हैं, पहले तो अल्लाह के तवक्कुल पे शादी होती थी, आज हम इन मामलात में भी बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ गए। वजह क्या है? क्योंकि हमने हर चीज को अपने हाथ में रखा है, तो लिहाजा ऐसी चीजों में पड़ने वाला ना चाहते हुए जादू में पड़ेगा। और आप याद रखिए कि जादू में पड़ना जो है ना, वो अपने दीन को जाया करना है। जिन लोगों ने हमारे साथ जादू का सेमिनार किया था तकरीबन फ्यू मंथ्स अगो, तो उनको इसकी रियलिटी पता होगी। लेकिन थोड़ा सा इस मौजू को इसमें भी हमें टच करना है कि जादू के बारे में इस्लाम क्या कहता है, मैजिक क्या है, और मैजिशियंस और ये सब क्या हैं। तो बेसिकली जादू जो होता है ना, सहर कहते हैं इसको अरबिक में, इंग्लिश में तो आपको पता ही मैजिक कहते हैं। एक ऐसी चीज है कि जिसका सोर्स नहीं समझ आता। आप ठीक ठाक थे, मियाँ बीवी बहुत खुशबार जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये नहीं कि शुरू से चल रहा था, मिजाज का फर्क था, कुछ ना कुछ अटपटी आदतों का फर्क था, वो तो एक नॉर्मल बात है कि भाई इतना हुआ आखिर में बात नहीं बनी। जादू के अच्छे भले शौहर बीवी बैठे में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम कोई ऐसी बात हुई कि नफरत हो जाती है। यानी जादू के लफ्ज के साथ लिख लीजिए अचानक, जहां आप किसी को अचानक किसी से नफरत करता देखें, अचानक कोई किसी की मोहब्बत में चला गया, अचानक कोई सेहतमंद बीमार हो गया और बीमार सेहतमंद हो गया, मिसाल है। यानी जहां हैपहेजर्डनेस होगी ना, वहां कहीं ना कहीं सहर का असर होगा। और ये गिरोहों पे फूंकना, दम करना, इसकी डिटेल्स आप वहां से सुनिएगा, क्योंकि मैं यहां उस पर दोबारा इतना जोर देना नहीं चाह रही, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 दिन में वो टॉपिक किया था, पूरी बुक पढ़ी थी कि जादू के बारे में इस्लाम क्या कहता है। बस इधर इतना समझ लीजिए कि जादू क्या है, कुछ वर्ड्स का असर। जैसे मैं मिसाल है कि अगर यहां बैठी हूं अगर कोई मेरे हाथ पे कुछ मारेगा यूं, ये देखिए मैं कर रही हूँ, तो मेरे हाथ पे थोड़ी तकलीफ होगी ना, क्योंकि मेरा हाथ भी मादी है, मैटर से बना है, और जो चीज ऊपर मारी जा रही है वो भी इसी तरह की है। बस जब जिस्म पे कोई हाथ या कोई चोट पड़ती है तो हमारे जिस्म को दर्द होती है ना, इसी तरह हमारे अंदर एक रूह भी है, सोल कहें स्पिरिट कहें, वो बड़ी रकीक से सॉफ्ट डेलिकेट है, उसके ऊपर कुछ बोले हुए अल्फाज का असर होता है। चलिए आपको मैं थोड़ा सा समझाने की नजर से कहती हूँ कि अगर यहाँ बैठे बैठे मैं आप में से किसी से कह दूं कि आप कितनी क्यूट लग रही हैं, आप कितनी प्यारी लग रही हैं, क्या मेरे इस लव से आपके अंदर कुछ खुशी का एहसास हुआ? कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है ना एकदम? हाँ, अब जब कोई हमारी तारीफ, कोई आपसे कहता है आप कितनी यंग लग रही हैं, अब मैं आरफा ने कुछ कहा आसपास में, इनको एक बात सुनाऊं तो ये बड़ी खुश होंगी, तो मेरा दिल तो नहीं है इनको खुश करने का इस वक्त, लेकिन चूंकि दर्श में आई है तो सुना दो। ये एक दो दफा मैं राइड देने आई तो मेरे साथ जो साथी थी, तो साथ अमीन होता है इनका बेटा छोटा ना, असल में वो बेटा काफी देर बाद मेरे हाले आया है, तो उसकी वजह से वो लगता है कि ये बस ये भी यंग है। तो एक दिन इनकी बड़ी बेटी साथ थी, तो मेरे साथ जो सिस्टर थी, तो मैंने उन्हें कहा कि ये आसफा की बेटी है ना, कहती है आसफा की बेटी, मैं तो समझती थी इनका बस ये अमीन ही एक बच्चा है, इनको देख के यही लगता है बस इनका इतना ही बच्चा होगा छोटा। तो अब ये कितनी खुश हुई है ये बात सुन के, हाँ खुश हुई है ना, और हम कितने खुश होते हैं जब कोई कहता है आप कितनी यंग लग रही हैं, आप कितनी फ्रेश लग रही है, और कोई ये कहते हैं आप कितनी पतली लग रही हैं, फिर तो दिक्कत है उसका मुंह चूम ले, है ना जी, हैं जी, आंटी को लड़की कहे, यस आंटी कहे तो उनको गुस्सा लगता, मैं तुम्हें आंटी लगती है ना, तो असर है ना अच्छा और बुरा, बस आप इसी को कह ले। अब कोई आपको एक दफा अच्छा लफ्ज कहे तो आप खुश है, तो अगर बार 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 उसको कहना तुम कितनी अच्छी, तुम कितनी प्यारी, कितनी, बस वो जादू करने लगे, किसी लड़की के बारे में यही बोलते जाएंगे, तो वो उसके अंदर जो एक उसका जिन का असर, हर इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला ने ऐसी कुव्वत रखी होती है, तो वो फिर उसके सहर में आ जाती है। इसी तरह कोई किसी को बुरा कहे, तुम कितनी होशियार हो, तुम कितनी चालाक हो, उसको बुरा लगेगा ना, फिर बार बार कहे तुम बहुत चालाक हो, बड़ी चालाक हो, तो वो एक बार कही तो बुरी लगी, तो जब बार बार कही तो और बुरी है ना, तो जादू का असर ऑपोजिट पड़ गया, यानी जादू में कुछ अल्फाज से सहारा लिया जाता है, वो बोला जाता है, और उसका तरीका ये होता है कि कुछ जिन्नात को मुसख्खर किया जाता है, जिसको कुछ ऐसी चीजें पढ़ पढ़ा कर लोग अपने ऊपर, यानी कुछ जिन्नों को अपने अंदर कर लेते हैं, फिर उसके जरिए से वो लेते करते हैं, बहुत ही वर्स्ट चीज है, तरीके बताने लगूंगी तो फिर तो बहुत ही मजा आएगा। हम आप लोग बल्कि देख सकते हैं, मैंने अभी रिसेंटली चेक की थी कि वेबसाइट पे उसकी एडिटिंग फाइल्स आ चुकी हैं, उसमें हमने कई वीडियोस देखी थी कि जो जादू करते कराते हैं वो किस तरह करते हैं, हराम है जो जादू करना कराना, वजह क्या है कि जो जादू करते हैं ना वो पहले शैतान को खुश करते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं। कोई शख्स जादू सीख ही नहीं सकता जब तक उसके और शैतान के बीच में एक एग्रीमेंट नहीं होता, बकायदा एक ट्रीटी होती है, और उस शैतान को खुश करने के लिए जादूगर को कब्रिस्तान में जाकर चिल्लाकशी करनी पड़ती है, कब्रों के बीच में जाके रहना पड़ता है, हर वो काम करना है जिससे शैतान खुश हो और अल्लाह नाराज हो। मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, तो इसको उल्टा पढ़ेंगे, कुफरिया कलमे बोलेंगे, कुरान के अल्फाज को बैक ट्रैक करके पढ़ते हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, तो आप पीछे से शुरू करें तो रहीम में पहले मीम है ना, मीम है, फिर या है, फिर हा है, फिर रा है, अलिफ है, लाम रा, ऑपोजिट पढ़ते हैं, गंदे यानी पीरियड्स के ब्लड्स के साथ कुरान पाक को लिखते हैं। आपको वीडियोस दिखाई थी, एक वीडियो हमने देखी थी कि 51 मुसहफ कुरान पाक के जो छोटे साइज के पॉकेट साइज होते हैं, उन्होंने किसी गटर और गंदे उसमें से मेन होल में से निकाले, जिसको एक रस्सी में बांध बांध के तो किसी ने वहां फेंके थे, टॉयलेट में बोल में वहां जाके वो कुरान और उसकी आयतें भेजते हैं, और एक औरत जो है वो जमीन पे कुरान के सफ़े बिछाकर उस पर डांस कर रही है। हर वो काम करना है कि जिससे शैतान खुश होंगे, यानी कभी किसी आमिल नजूमी के पास जाना कि जी मुझ पे जादू हो गया, मेरे साथ मामला, ये करना आपके ईमान को खत्म कर देगा, जो जादू करता कराता है वो तो छोड़े, हम करते तो नहीं है, हम तो जाके कहते हैं जी तोड़ करा रहे हैं, हमें हम चेक करा रहे हैं कि मेरे शौहर पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया। बिल्कुल नहीं जाना, जो करता है या जो कि ये कहता है कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि मेरे पे किसी ने किया है तो मैं चेक करूं, को बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जी आप तरह ना
एक तो जादू करता है ना, और अगर जो कोई कराता है उसके बारे में क्या?
जी, सेम थिंग है, सेम थिंग है। देखिए, जिना करना या जिना कराना, व्हाट डज इट, व्हाट डिफरेंस इज, राइट? तो इसके बारे में इस्लाम का बहुत क्लियर कट है, किसी किस्म की ऐसी चीज जिसमें कोई ऐसा काम आ जाए, अगर आप और मैं करेंगे तो ये इसी में आ जाएगा। फिर आपको पता है कि वो इस तरह के काम करते हैं कि गिरहें लगाकर और धागों पे पड़ के फूक के जाके कभी गहरे कुएं में फेंक आएंगे। जादूगर हमेशा आपसे आपकी माँ का नाम पूछेगा, जादूगर आपके कपड़े जिसमें कभी आपको पसीना आया और जो पहने हुए कपड़े होते हैं वो मांगेगा, फिर वो उसको पढ़ते हैं, फिर वो आपको पहनाते हैं, कुछ चीज़ें खोली जाती हैं, कुछ पढ़ी जाती हैं, फिर जादू के जरिए से यानी जादूगर खिदमत लेता है शैतानों की तो उनको खुश करता है। काला बकरा मांगेंगे आपसे, कुर्बानी चाहिए, और बकरा भी का फलां जगह कब्रिस्तान में छोड़ के आओ और रात के आकर छोड़ के आओ। वो असल में जाके स्लॉटर करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर जिबा करते हैं, वो बिस्मिल शैतानी करके उसको खुश करके उसके ऊपर करते हैं। ये ना करें ना तो इन जादूगरों को जो शयातीन है ना वो खा दें, क्योंकि ये गलत काम कर रहे हैं, और जो इस काम में पड़ गया फिर उसने तो अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। और आप याद रखिए कि जो शख्स जादू करे कराएगा ना वो शादी नहीं करेगा, जादूगर को जो एक सजा दुनिया में मिलती है ना वो शादी के काबिल नहीं रहता। ये भी उनके एक किस्म के एग्रीमेंट में होता है अपने शैतानों से कि हम शादी नहीं करेंगे। फिर इसीलिए आप देखिए कि जो आमिल नजूमियों के ठेले हैं, कई हमने उसमें वीडियोस में देखे भी तो सीरीज में, कि वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जिना के अड्डे बन चुके हैं। भोली भाली औरतें लड़कियां जाती हैं कोई सास की तरफ के लिए तावीज लेने और कोई मियाँ की मोहब्बत लेने, और बाज दफा इतने गंदे उनके वहां काम है कि जिस्म के ऊपर नंगे बदन पे वो उनसे तावीज लिखाती हैं। और ऐसी भी गंदी चीजें हैं कि जो औरतें बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो कहते हैं एक रात इधर रहोगे तो बच्चा होगा, ये सब गंद है। और आप देखिए हमारी दुकान, हमारे मुल्क की गलियों में रोड के किनारों पे आमिल नजूमी का नाम लिखा है। फिर उसमें हमने एक कहानी देखी थी कि एक शख्स जो इसकी पेंटिंग कर रहा था, लिख रहा था कि उसका एड लिख रहा था, तो इन्होंने उसको पकड़ लिया जाके, बताओ तुम्हें किसने दिए पैसे? किसी ने दिए ना। किस्सा मुख्तसर के उसके थ्रू वो एक पूरे गैंग के पास पहुंचे थे जो ये काम करते थे, और उसके अंदर से फिर क्या कुछ निकला था। और वो एक पूरा ग्रुप है, और बेनमाजी कुछ कोई उल्लुओं के खून के साथ इलाज करते हैं, गंदे बर्तनों में उल्लू का खून रखे, वो कहते हैं हम पिलाते हैं इन औरतों को। और आपको पता है कि उल्लू के अंदर कई ऐसी चीजें हैं कि जो शैतानों को खुश करने वाली हैं। तो लिहाजा कभी भी, अब हमने जादू अल्लाह ना करे सीखना तो नहीं है, ना करना है, लेकिन अल्लाह आपको किसी मुश्किल में ना डाले, कभी भी परेशान हो, लेकिन आपने कभी किसी नजूमी और ऐसे आमिल के पास नहीं जाना। हाँ, जादू बरहक है, डेफिनेटली जादू हो सकता है, हुआ भी, अल्लाह ने सिंबलाइज करने के लिए नबी सल्लम पर भी जादू करवाया। लबीद बिन आसिम एक यहूदी था, उसने अल्लाह के नबी के सर के बाल लेकर उसमें गिरह लगाकर और एक कुएं में जासान नाम का कुआं था उसमें फिकवा दिया, तो आपको भूल लाहक हो गई, आपको फीलिंग जो होती थी कि मैं पाक नहीं हूं, मैं अपनी बीवियों के पास गया हूँ, भूल इस तरह की थी, ना पाकी और पाकी में हर वक्त शक था। और मैंने प्रैक्टिकली कुछ लोगों में से सुना, किसी सिस्टर ने अपना इशू बताया तो मुझे वही याद आ गया कि अल्लाह के नबी के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला है। वो कहती मुझे लगता है मैं कभी पाकी नहीं होती, सारा सारा दिन नहाती हूँ, सारा दिन ये करती हूँ, ये डेफिनेटली ये इंसान को अजियत देने के लिए काम होते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें अगर कभी आती हैं तो फिर आप समझ लें कि इसके इलाज के लिए आपने क्या करना है, कुरान और सुन्नत। अल्लाह ने किसी मामले में हमें अलग नहीं किया हुआ, हमारा ईमान है कि जादू है। और जादू की हमने किस्में पढ़ी थी, जो सेकंड डे का पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें मेरे हाल 10-12 किस्में थी जादू की, कि मिसाल है कि आप ही पूछ सकते हैं कि अच्छा जादू के जरिए कोई क्या कर सकता है, तो पहली बात है कि शादी में रुकावट डाल सकते हैं, सबसे बेहतरीन जादू इनका शादियों और रिश्तों में मतलब बिगाड़ पैदा करना है, शौहर को बीवी से दूर कर देते हैं, सहरे तफरीक कहते हैं, रिश्तेदारों के बीच में नफरत है, बेटे को माँ के खिलाफ कर दिया, बहनों को भाई के, भाई को बहनों के खिलाफ किया, एक जादू सिर्फ सहरे इस्तहासा है कि जो औरतों को ब्लीडिंग की बीमारी रहती है। आजकल आप देखिए कितने प्रॉब्लम्स हैं सिस्टर्स के साथ कि हर वक्त ब्लीडिंग है, काम में ज़्यादा है, ये भी एक किस्म का जादू होता है, इस्तहासा इसको बोलते हैं। फिर सहरे मोहब्बत पढ़ा था हमने, किसी को ऐसे ही किसी के मोहब्बत में डाल देना। बीवी का ख्याल ही शौहर को हर वक्त रहता है, वो बच्चों की तरह उसके पीछे ही फिरता है और हर वक्त उसको बस एक ही धुन सवार है ना। फिर इसी तरह से जुनून, जुनूनी हरकतें करते हैं। फिर बीमारियां, कई बीमारियां आप देखिए वो हैं ही जादू का असर, जिस्म के जिस हिस्से को वो हिट करना चाहे वो हिट करवा लेंगे। और आप डॉक्टर कहेंगे कोई इलाज ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ मसला ही नहीं है, कुछ नहीं है। जब सारे इलाज कर करा के आप देखते हैं तो पता चलता है कि फिजिकली कोई चीज नहीं नजर आ रही, क्योंकि स्पिरिचुअली उसको बांधा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर बाज लोग वहम में शिकार हो जाते हैं, नींद नहीं आती, बेजारी है, बेकरारी है, काहली का जादू है। आप जाके नजूमियों से पूछे, आपसे ये आके मेन्यू कार्ड दिखाएंगे, आपको कौन सा जादू कराना है, आपने उसको वहम में मुब्तला कराना है या आपको उनके बच्चे, फिर बच्चे पैदा ना करने का। ये सारे चीजें हैं, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। करें क्या, पहली बात है, सबसे पहली बात है कि अपने अकीदे को पुख्ता रखें। जादू का असर अमूमन गाफिल इंसान पे होता है। जब हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो उसके तकाजे भी जानते हैं, पाक साफ रहते हैं, रिज़्क़ के हलाल का एहतमाम करते हैं, सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं, कुरान के साथ हमारा इस तरह का ताल्लुक है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है, ऐसे बंदे पे जादूगर का जोर नहीं चलता। हमेशा जादूगर अनपढ़, जाहिल और ढिलमिल यकीन के लोगों को ट्रैप करेंगे। एक कोई शख्स साहिब थे, तो वो इन चीज़ों को सुनते थे, किसी का बहुत ही इतका था तो उन्होंने कहा मुझे भी ले जाओ सर अपने बाबे के पास, मैं देखूँ वो क्या है। अब वो कहती हैं कि वो बड़े पहुंचे में ये है वो है। खैर वो उनके जो बुजुर्ग थे वो भी एक दिन साथ चले गए। अब वो कहते हैं उन्होंने अंदर बिठा लिया, इलाज करना है, बंद किया थे। उन्होंने कहा भी इनका भी इलाज करें, इनको भी कुछ असर है शायद। अच्छा जी, अंधेरा करते थे, फिर एक माहौल बना लेते हैं, फिर बत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई, कुछ धुआं रखा, फिर उसको ला के घर सर के पास ला के दिखाते हैं, अच्छा भाई तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, ये आ रहा है। अब जो कच्चे यकीन को होगा उसको वो जो कहेंगे ऐसे ही लगेगा हो रहा है। ये चूंकि मजबूत है वो जो कहेगा मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं, तो उस पे वो ऑफेंड हो गया और उसने कहा कि तेरे पे नहीं जादू हो सकता, मुझे तेरा मैं इलाज नहीं कर सकता, तू यहां से चला जा क्योंकि तू बेयकीनी के साथ आया है। यानी इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो ये सारी चीजों को इस्लाम क्या कहता है कि ऐसी चीजों में नहीं पड़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ था तो क्या इलाज किया था आपने उसका? सूरत नास और फलक, आखिरी दो सूरतें नाजिल हुई थी, 11 आयतें, हर आयत के उतरने पर एक गिरा आपके बालों में लगी भी खुल गई थी और आप उसके सहर से आजाद हो गए थे। तो लिहाजा इन सारी चीजों के बारे में इंसान को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसी से मिलती जुलती चीज है दम करना। अब दम किसी करवाना कराना, ये भी हमारे अंदर एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सा इशू सा लगता है कि क्या है, किसी पे जादू है या बच्चे पे या किस पे करें, पानी में घोल के पिलाएं, क्या करें। तो आप देखिए कि इस्लाम पहली बात यह है कि किसी का जादू उतारने के लिए जो दम कहा किया जाता है ना उसको नुशरा बोलते हैं, नशर होता है ना उससे नुशरा। अब बाज लोग क्या करते हैं कि चूंकि मेरे पे किसी ने जादू किया था तो अब मैं भी किसी आमिल से जाके इलाज करा के अब उस पर करूंगी, ये तो हराम है। कतन बीवी को किसी आमिल नजूमी के पास जाने की जरूरत नहीं है अपने शौहर के ऊपर हुए हुए जादू को तोड़वाने के लिए, नेवर, कभी भी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि एक शख्स पे वाकई कोई असर है, वो शख्स अगर खुद होश हवास में है ना, जितना कसरत से वो खुद कुरान पढ़े, सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें, आयतुल कुर्सी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक, इसी तरह कुरान पाक में कुछ आयतें हैं जिनको लोग मंजिल कहते हैं, आपने अक्सर जिक्र सुना होगा, उसके बारे में उलमा कहते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हकीकत है। ऐसी आयतें जिसमें कोई, यानी कुरान की आयतों के अलावा कोई ऐसा जादू कि जिसमें जंतर मंतर और कुछ ऐसे हैं। अगर आपके ऐसे इधर स्क्रीन होती तो मैंने एक सेव किया हुआ था कि एक छोटा सा क्लिप है कि एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग नहीं यानी इंग्लिश स्पीकर है, तो उन्होंने किस तरह से किसी के गले में जो तावीज लटका हुआ था उसको खोल के उसके अंदर किया, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। के बाद लोग कहते हैं अच्छा नजर लग गई है तो तावीज गले में पहन लेंगे तो फिर उतर जाएगी, लेकिन जब आप अंदर से खोल के देखते हैं तो उसमें क्या कुछ होता है अल्लाह की बता, निरा शिर्क, बीच में या अल्लाह लिखा हुआ है और इर्द गिर्द वो खाने बन के ना ऐसे ऐसे जैसे बॉर्डर्स बने हैं, तो उसमें फरिश्तों से मदद मांगी हुई है और अजीबो गरीब शैतानों के नाम लिखे हुए हैं कि हम आपसे मदद मांगते हैं, ये काम कर दीजिए। ये सब इस्लाम नापसंद करता है। गले में तावीज लटकाना इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। तमीमा बोलते हैं, तमाए में इसकी जमा होती है। दम की हद तक अगर आप समझते हैं कि शख्स खुद नहीं पढ़ रहा, पढ़ नहीं सकता, इतना असर है बीमारी का, या बच्चा है तंग कर रहा है, या बच्चे को नजर लगी है, या कुछ भी है, तो फिर आप खुद कोई ऐसी सूरत कुरान की आयत पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ लें, और यकीन से आप कुरान की कोई भी आयत पढ़ लें, कुरान तो पहाड़ों को हिला देता है। एक दफा एक साहब भी सफर में थे, तो वहां कबीले के लोगों में से किसी को इस तरह से कोई असर के असर आते, इन्होंने कहा तुम मुसलमान हो इसका इलाज करो। कहते मुझे कुछ पता भी नहीं था, मैंने क्या क्या सूरत मोमिनून का आखिरी रुकू जो है ना, इतना फहसिब तो मन्नमा खलकनाकुमा, बस वो आयतें पढ़ी, और अल्लाह का हुक्म है कि उसके कान में जब फूका तो वो ठीक हो गया। बाद में जब नबी सल्लम के पास जाकर उनको वाक्य सुनाया, कहा तुमने क्या पढ़ा था, कहा मैंने ये आयतें पढ़ी थी, फरमाए तुम्हारे इन आयतों को पढ़ने से तुम्हें पता कितने जिन जल के राख हो गए। वजह क्या आपको पता है, उन आयतों में अल्लाह ने दो सवाल पूछे इंसानों और जिन्नों से, अफहसिब तुमन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान किया कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया है, पर्पस लेस पैदा किया है, तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, सिर्फ खाओगे पियोगे और मजा करके चले जाओगे, और वन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम हमारी तरफ लौटाए ना जाओगे। यानी ये बात सुनकर जिन जल के राख हो गए, अब पढ़ने वाले को नहीं पता, सुनने वाले को नहीं पता, उनको क्या असर हो गया इन आयतों का। ये इतनी स्ट्रांग आयतें हैं कि जिन्नों पे पढ़ के फूकी जाए तो वो जल जाते हैं, लेकिन जिन इंसानों की हिदायत के लिए ये कुरान नाजिल हुआ है वो इसको पढ़ें भी तो कई दफा पढ़ के गुजर जाते हैं, हम समझते ही नहीं है। ठीक है, फिर इस तरह छोटे बच्चों को आप दम कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि हजरत हसन और हुसैन जो आपके नवासे थे, आप उनके लिए एक दम किया करते थे, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन कुल्ली शैतान व हामतिम व मिन कुल्ली आइनिल लामतिन। ये बुखारी के अल्फाज हैं, 3371 नंबर है, कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की के पूरे पूरे कलेमात के जरिए हर एक शैतान से और हर जहरीले जानवर और हर नुकसान पहुँचाने वाली नजरे बद से। ठीक है, तो इसी में ये भी नोट कर लीजिएगा कि नज़र भी लगती है, इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह उस सेशन में बहुत डिटेल से बात हुई है कि नजरे बद बरहक है, अलैनो हक्कुन। ठीक है, नजर लगती है, नजर हसद की भी होती है, मोहब्बत की भी होती है, अपने की भी लगती है, बेगाने की भी लगती है, इसलिए इसका तोड़ भी अल्लाह के नाम के साथ है। एक दम बड़ा मारूफ है जिब्रील के नाम पर कि बिस्मिल्लाह अरकीक का व मिन कुल्ली शयइन युज़ी का मिन शर्रि कुल्ली नफ्स नवाइन हासिदिन अल्लाह यशफी का बिस्मिल्लाह अरकीक का। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, 5700 नंबर है, कि अल्लाह ताला के नाम के साथ हर उस चीज़ के शर से जो आपको तकलीफ देने वाली हो और हर नफ्स या हसद करने वाली आंख के शर से मैं आपको दम करता हूँ, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, मैं अल्लाह के नाम पर आपको दम करता हूँ। ये किसने किया था, अल्लाह के नबी को, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया था। तो इस तरह के दम जो हैं वो दुरुस्त हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें शैतानों की बड़ाई हो या जिन्नों को बीच में लाया जाए। फिर इसी तरह तावीज, गंडे, कड़ा पहना देना, काले धागे बांध देना, बाद जब आपने कई बेचारी ऐसी औरतों को देखा होगा, घूंगे मोती बंधे होते हैं, सिपियां बंधी होती हैं पड़ी में, ये सब जायज़ नहीं है। बाद लोग धागे बांधे जी फलां कब्र से धागा लेकर आए हैं, ये सब चीज़ें हराम है, ये पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी ने इन सबको शिर्क कहा। अबू दाऊद की रिवायत है 3883 नंबर की इब्ने मसूद से कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि झाड़ फूँक यानी नजरे बद वगैरह से तहफ़ के लिए, तावीज़ गंडे बांधना और मोहब्बत के लिए किए जाने वाले अमाल जादू, ये सब शिर्क है। ठीक है, तो लिहाजा ये दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह बाद लोग कुरान की आयतें पढ़कर गले में लगा देते हैं, जैसे आयतुल कुर्सी है, या पूरा कुरान ही लटका देते हैं, पढ़ा भी नहीं जाता, और उसको मेरे वाले बड़ी से बड़ी खुर्दबीन के नीचे रखें तो भी नहीं पढ़ सकते, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह का नाम लिख के आप गले में लटका लेते हैं, इसे क्या होगा? ये क्रिश्चियंस को इमिटेट करना है, वो जीसस का नाम, मैरी जीसस वट एवर लगाते थे, तो मुस्लिम्स में भी ये चीज़ आ जाती, तो लिहाजा लटकाना नहीं है, ये तो कुरान की डिसरिस्पेक्ट है। देखिए हर चीज़ का एक मकसद होता है ना, किचन में काम करने के बर्तन है, आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो पकाते हैं, ठीक है, अब उन बर्तनों को आप लटका दें तो कैसा लगेगा, अजीब लगेगा ना, तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि गले में काले धागे के साथ जो तावीज़ बांध लेते हैं, रिवायात में आता है कि जिसने तावीज़ पहना या लटकाया अल्लाह उसको उसी के हवाले कर देगा, यानी अल्लाह ताला कहता है मुझे तुम्हारे कामों की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये तुम्हारा काम करेगा, और वो तावीज़ क्या काम कर सकते हैं आप खुद सोच सकते हैं। और उसमें अक्सर देखिए पत्ते और धागे और न जाने क्या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो ये सब चीज़ें जो इंसान को उसके दीन से दूर कर देते हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम कहते हैं इट्स फाइन, क्या फ़र्क पड़ता है, फर्क ये पड़ जाता है कि उसकी वजह से इंसान को अपना दीन कमजोर होता हुआ दिखता है।